الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إرشاد باري تعالى ہے، إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة، کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے یہ بیت اللہ ہے. مبارکم وہدل للعالمین، اور یہ برکت والا گھر ہے، اور یہ عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اول عالم کہا، زمین پر پہلا گھر، اور یہ مرکز عالم بھی ہے. یہ بالکل زمین کے وسط میں ہے، زمین کا مرکز ہے، اور یہ وسط عالم بھی ہے کہ یہ زمین کے بالکل بیچ میں ہے. تو اول عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے. اللہ نے یہ گھر بنایا عبادت کی نیت سے، اس گھر میں آ کے لوگ عبادت کریں گے. مشائخ نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر بنانے کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے سمت کا تعین ہو جائے، کہ جہاں کہیں ہے مسلمان پوری دنیا میں وہ اپنا رخ اس مبارک گھر کی طرف کر کے نماز ادا کرتا ہے. تو ہم اس گھر کی پرستش نہیں کرتے، یہ گھر ہماری جہت کے لیے ہے، مگر اللہ نے اس کی شان بڑھا دی، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا، اس لیے یہ گھر جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو پہلی وجہ مشائخ کے نزدیک اس گھر کے تعین کرنے کی، کہ عبادت گزار اس کی طرف رخ کریں. تو ہم اس گھر کی عبادت نہیں، اس گھر کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اس پر نازل ہونے والی تجلی کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالی کی عرش سے لے کے اور زمین تک، تحت السری تک یہ تجلی پڑ رہی ہے، اور مسلمان اس تجلی کو سجدہ کرتے ہیں. اور اسی لیے جو شخص وہاں جاتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کے اندر دیوانہ پن آ جاتا ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. تو اللہ نے اپنا گھر بنایا، اللہ نے اس پر اپنی تجلی ڈالی، اسی لیے اس اللہ کے گھر میں برکتیں ہیں. اللہ نے کہا یہ ہدایت ہے تمام جہان. آج سے کئی سال پہلے امریکہ میں ایک فلم प्लानिटेरियम में जाके देखने का मौका मिला। सितारों पे एक डॉक्यूमेंट्री थी और उसका नाम था द स्टार। और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने सितारों से मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह सितारों के जरिए से इंसान अपने रास्तों का तायुन कर सकता है, डायरेक्शंस मालूम कर सकता है। मगर साथ साथ ये भी उन्होंने दिखाया कि जितने सितारे हैं सब ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा ये जितनी गैलेक्सीज हैं ये भी घूम रही हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज अरबों सितारों को लेके घूम रही हैं। उन्होंने कहा जी एक गैलेक्टिक सेंटर है, एक सितारा बीच में है जिसके गिर्द हर एक वो जो है वो घूम रहा है, हर एक सितारा घूम रहा है। तो थोड़ा सा उन्होंने इस सिस्टम को तेज करके दिखाया तो वाकई लग रहा था कि सारे सितारे एक सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं। एक आलिम भी साथ थे, वो भी ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हदीस पाक में आता है कि आसमान पे एक बैतुल मामूर है, जैसे बैतुल्ला नीचे है आसमान पे एक बैतुल मामूर है अल्लाह के अर्श पे, और उस बैतुल मामूर के गिर्द भी तवाफ फरिश्ते कर रहे होते हैं, और जमीन पर जो है बैतुल्ला है उसका तवाफ इंसान कर रहे हैं। तो ये जो अल्लाह की तजल्ली है ये उस बैतुल मामूर से होते हुए जमीन पे आती है, ये वही तजल्ली जो बैतुल मामूर पे पड़ रही है वही तजल्ली बैतुल्ला पे पड़ रही है। तो उन्होंने ये फिल्म देखने के बाद कि सितारे भी यूं तवाफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वही तजल्ली इन सितारों के बीच में पड़ रही है। तो आसमान पर फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, जमीन पर इंसान तवाफ कर रहे हैं, और बीच में सितारे तवाफ कर रहे हैं। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। तो बैतुल्ला शरीफ वो घर जहां मोमिन का दिल खुद बखुद खिंचता है, ये ऐसी मैग्नेट अल्लाह ने बना दिया है। इस घर की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं, जो इस घर का ज्यारत करता है हज्जे बैतुल्ला करता है। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया वो गुनाहों से इस तरह पाक होता है, रजा कयौमिन वलदत उम्मुहू, इस तरह गुनाहों से पाक लौटता है जैसे उस दिन गुनाहों से पाक था जब उसकी वालदा ने उसे जना था। तो बड़े फजाइल इस मुबारक घर की ज़ियारत के। हदीस पाक में आता है कि 100 रहमतें हर वक्त अल्लाह की बरस रही होती है इस मुबारक घर पे, उसमें से 50 रहमतें उस पर हैं जो इस घर का तवाफ कर रहा होता है, और 30 रहमतें उसके लिए जो इस घर के गिर्द सजदे और इबादात कर रहा होता है, और वो 20 रहमतें बाकी उनके लिए जो सिर्फ बैठ के इस मुबारक घर को देख रहे होते हैं। तो इस मुबारक घर को देखना भी बहुत बड़ी इबादत है। हदीस पाक में आता है कि हजरे अस्वद और बाबे काबा यानी बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे और हजरे अस्वद के बीच में एक जगह है जिसको मुल्तजिम कहते हैं, और हदीस में आता है कि मुल्तजिम पे दुआएं कबूल होती हैं। जो हदीस रिवायत जिन मुहद्दिसीन ने की, पूरी जो सिलसिला है नबी अलैहि सलात वसलाम से लेके और जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं जिन जिन ने इस हदीस को रिवायत किया, उन्होंने ना सिर्फ ये हदीस रिवायत की कि इस जगह पे दुआ कबूल होती है, बल्कि साथ साथ अपना तजर्बा भी बयान किया कि उन्होंने जो उस जगह पे दुआ मांगी अल्लाह ने उन दुआओं को भी कबूल फरमाया। شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا یہ حدیث نقل فرمائی، اور یہ عمل بھی نقل فرمایا کہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری ہر دعا اس ملتزم پہ قبول ہوئی. یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی جتنی دعائیں اس مبارک جگہ پہ اس ملتزم پہ مانگی اللہ نے ان دعاؤں کو بھی قبول فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ملتزم پہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا رخسار اس ملتزم پہ رکھ دیا، دونوں ہاتھ بھی اس مبارک دیوار پہ رکھ دیے، آپ کا سینہ مبارک بھی اس دیوار کے ساتھ، اور آپ بہت دیر تک یہاں دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ وہاں سے پیچھے ہوئے دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. تو ملتزم اللہ نے ایسی جگہ، یہ حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان کی جگہ ہے، اور یہاں پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایک انجینئر صاحب تھے اور یہ بیت اللہ شریف میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے. دعا کی قبولیت کا کیا حال؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا اور میں ملتزم پہ گیا، اور ملتزم پہ جا کے میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو تو حافظ قرآن بنا. کہنے لگے کہ یہ دعا کی بس ایسے ہی دل میں آیا کہ بیٹا حافظ قرآن بن جائے. کہتے ہیں یہ دعا کر کے اور پھر پیچھے آیا، نماز ادا کی، کچھ دیر بعد اپنی ہوٹل میں واپس گیا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے، ہوٹل کے کمروں کے فونوں کو استعمال کیا جاتا تھا. ہوٹل میں جیسے ہی واپس داخل ہوا تو کمرے کا فون بجا، اٹھایا تو بیگم کا پاکستان سے فون تھا. میں نے پوچھا کیسے یاد کیا؟ بیگم نے کہا کہ بس بہت دنوں سے دل میں آ رہا تھا کہ بیٹے کو حفظ کروانا ہے، آج بیٹے کو حفظ کے مدرسے میں داخل کروا کے آئی تو سوچا کہ آپ کو فون کر کے یہ خوشخبری سنا دوں. وہاں دعا کر کے آئے اور یہاں بیٹے کا حفظ شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت والا بنایا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارکوں یہ برکت والی جگہ، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. تو دل آ کے یہاں بدل جاتے ہیں، یہ دلوں کو بدلنے کی جگہ ہے. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ جیسے واشنگ مشین ہوتا ہے نا، کپڑا واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے، میلا کپڑا، مٹی بھی ہے تو دھول بھی ہے تو میل بھی ہے، مگر واشنگ مشین میں چکر لگاتا ہے وہ کپڑا اور صاف ہو کے نکل جاتا ہے. اسی طرح یہ بیت اللہ شریف ایسی برکت والی جگہ، ایسا ہدایت کا گھر ہے کہ اس گھر پہ بھی میلے دل لے کے، گناہوں والے جسم لے کے انسان پہنچتے ہیں اور اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں، پاک صاف ہو کے نکل آتے ہیں. تو برکتوں والا گھر، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے. اتنی برکتوں والا یہ گھر، آخرت کی برکت بھی ہے، گناہوں کی مغفرت بھی ہے، دنیا کی برکتیں بھی ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی آتا کہ اللہ کے نبی، مجھے رزق کی تنگی ہے، تو آپ اس کو فرماتے کہ تم حج اور عمرے کی کثرت کرو، اللہ تیرے رزق میں برکت بڑھا دیں گے. तो ये ऐसी जगह कि इस जगह पर दुनिया की बरकतें भी मिलती हैं, आखिरत की बरकतें भी मिलती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जहानों के लिए हिदायत की जगह। चुनाचे अमेरिका में एक खातून यहूदी औरत, उसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसी पक्की मुसलमान बनी कि हर हर नमाज में 1 घंटा लगाती, तवज्जो के साथ, याद इलाही के साथ, खूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो के नमाज पढ़ने का शौक रखती। हत्ता कि जो मुसलमान इलाके के होते, पैदाइशी मुसलमान, वो भी उसको देखकर अश अश करते। ख्वातीन हैरान हो जाती कि देखो ना, ये मुसलमान थी, ये तो यहूदी औरत, मगर इसके अल्लाह से ताल्लुक और इसकी इबादत का शौक कैसा कि 1 1 घंटे ये इस तरह खड़ी रहती इबादत में, इतनी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ती, इतनी इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। तो किसी शख्स ने उससे पूछा कि तेरा इस्लाम की तरफ आने की तरतीब कैसे बनी, यहूदियत से इस्लाम में कैसे आ गई। अमेरिका का एक शहर सियाटल के रहने वाली ये खातून यानी लगी कि मुझे इस्लाम की तरफ लाने वाला कोई इंसान नहीं है। तो सवाल पूछने वाले और हैरान हुए कि किसी इंसान के जरिए से नहीं तो फिर किस तरह से इस्लाम की तरफ आई। कहने लगे कि मैं भी इंजीनियर और मेरा शौहर भी इंजीनियर, हम दोनों यहाँ एक इंजीनियरिंग फर्म में काम करते थे। हमारी फर्म के अंदर अनाउंसमेंट हुई कि एक शाख जो है वो सऊदी अरब में भी खोली जा रही है, तो जो भी वहां जाएगा और उस नई शाख में काम करेगा उसे बेहतर पैकेज मिलेगा, बेहतर तनख्वाह मिलेगी। मेरे शौहर और मैंने सोचा कि हम चले जाते हैं, एक नए मुल्क को देख भी आएंगे और तनख्वाह भी बेहतर मिलेगी। तो जद्दा के अंदर ये नई ऑफिस खुली थी, हम यहां से जद्दा चले गए। कुछ महीने वहां नई ऑफिस में काम किया तो हमने देखा कि यहां पे मुसलमानों का मुल्क था, मगर पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं, हर रंग का, हर नस्ल का मुसलमान आ रहा है और 2 चादरें बांध के आ रहा है, भरा हुआ है शहर ऐसे लोगों से 2 चादरें बांध के। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये क्या है, पूरी दुनिया के लोग मुसलमान यहां जमा हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी जद्दा के साथ ही मक्का है, ये मुसलमानों का होली सिटी है, ये मुसलमानों की शहर, मुसलमानों का बहुत ही अजमत वाला शहर है और यहाँ हज के लिए लोग आते हैं, सालाना हज होता है, और ये मुसलमान कहते हैं कि यहाँ अल्लाह का घर है, तो इस घर की जियारत के लिए, हज करने के लिए मुसलमान हर साल जमा होते हैं, पूरी दुनिया से हर रंग के, हर नस्ल का मुसलमान आ जाता है। कहने लगी, मैंने अपने शौहर से कहा कि अच्छा, ये मुसलमान इसको अल्लाह का घर कहते हैं, तो आओ मैं और आप भी अल्लाह का घर देख के आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने कहा कि भाई तू और मैं मुसलमान नहीं है तो हमें इस शहर में जाने की इजाजत ही नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई मैं देखना चाहती हूँ ये कैसी जगह है। और शौहर ने कहा कि नहीं, हम तू और मैं नहीं जा सकते। यानी लगी कि साल पूरा गुजर गया, साल गुजरने के बाद फिर यही हज का वक्त आया, फिर मैंने देखा कि जी हर तरफ से, पूरी दुनिया से मुसलमान मर्द और औरत जो हैं वो बैतुल्ला शरीफ की जियारत के लिए जा रहे हैं। अब मैंने अपने शोहर से कहा कि ठीक है, मैं और तू मुसलमान नहीं है, तू ऐसा कर, तू मुसलमानों वाली टोपी पहन ले, मैं मुसलमान औरतों की तरह सर पे चादर बांध लेती हूँ और हम चलते हैं, अगर हमें दाखिल होने दिया मक्का में तो ठीक है, नहीं दाखिल होने दिया तो वापस जद्दा आ जाएंगे। कहने लगे कि हम अपनी गाड़ी लेके गए और अल्लाह की शान वहां पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी वाले बंदे ने रोका नहीं, हम मक्का मुकरमा में दाखिल हो गए। बैतुल्ला शरीफ के करीब कोई पार्किंग की जगह थी, वहां गाड़ी पार्क की और मैं और मेरा शौहर हम दोनों चलते चलते हरम शरीफ में दाखिल हुए। हम जैसे ही हरम में दाखिल हुए और नीचे मताफ में पहुंचे और हमारी नजर जो है इस मुबारक घर पे पड़ी, तो हमारी नजर थोड़ी देर तक बिल्कुल टिक गई। ऐसा मंजर कि इस मंजर से आंखें हटाने को दिल नहीं हो रहा, और दिल पर ऐसा एक रोब और ऐसा एक अजीब कैफियत कि मेरा शौहर भी खड़ा बहुत देर तक देखता रहा, मैं भी बहुत देर तक इस मुबारक घर को देखती रही। हत्ता कि थोड़ी देर बाद मेरे शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगे कि मैंने अपने शौहर से पूछा, इज दिस नॉट रियलिटी, क्या ये हकीकत नहीं है? मेरे शौहर ने कहा, दिस इज रियलिटी, ये हकीकत है। तो फिर मैंने कहा, देन व्हाई शुड वी नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, तो फिर हम क्यों इस हकीकत को कबूल न करें? चुनाचे मैंने और मेरे शौहर ने बगैर किसी मुसलमान के हमें तबलीग किए, हम दोनों ने सिर्फ इस मुबारक घर को देखकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। मुबारक वहुदल, बरकत वाला घर है और ये जहानों के लिए हिदायत का जरिया। तो ये कबूलियत की दुआ की जगह, ये गुनाहों से पाक होके निकल जाने की जगह और ये हिदायत की जगह है। तो बड़ा ही सआदतमंद है वो मुसलमान जो दो चादरें बांधता है, अल्लाह की मोहब्बत में लब्बैक के नारे लगाता है और दीवाना वार हर चीज को छोड़ छाड़ के इस मुबारक घर की तरफ बढ़ता है। तो इस घर के सफर का ताल्लुक जो है, ये बड़ी सआदत है। इस घर का सफर बहुत बड़ी सआदत, और ये सआदत हर एक को नहीं मिलती। इसलिए मशाइख ने फरमाया कि इस मुबारक घर की जियारत जो है, इसका ताल्लुक माल के साथ नहीं है कि हम अमीर होंगे तभी इस घर की जियारत हो सकती है, बल्कि मशाइख ने फरमाया कि इस मुबारक घर की जियारत जो है, इसका ताल्लुक आमाल के साथ है, तलब और जौक के साथ है। तो जितनी तलब ज्यादा होती है उतना ज्यादा इस घर की ज्यारत नसीब होती है। इसीलिए कई मरतबा ऐसा हुआ, ये आजिज भी ऐसे लोगों को जानता है, हो सकता है आप भी ऐसे लोगों को जानते हो। अल्लाह ने इतना माल दिया है, हर रोज यहां पाकिस्तान से सऊदी अरब फ्लाइट लेके इस मुबारक घर की ज्यारत के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, इतना अल्लाह ने माल दिया, मगर एक मर्तबा भी इस घर की जियारत नसीब नहीं हुई। और ऐसे भी लोगों को ये आजिज जानता है कि खाने पीने को भी पूरा नहीं, औलाद को भी बस गिरते पिड़ते पाल रहे हैं, और अल्लाह ताला ने दर्जनों मर्तबा हज की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह, तो इस घर के सफर का ताल्लुक माल के साथ नहीं है, इस घर के सफर का ताल्लुक आमाल के साथ है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा शौक था इस मुबारक घर की ज्यारत का, और बहुत ही दीवानावार शौक रखते थे। उस जमाने में हवाई जहाज का सफर नहीं होता था, तो सफर भी लंबा होता था, मुशक्कत वाला भी होता था, बहरी जहाज से होता था, और माल भी खूब इकट्ठा करके जाना जरूरी, और कई महीनों बल्कि सालों का इंतजाम पीछे घर वालों के लिए भी छोड़ के जाना जरूरी। तो हज का सफर एक मुश्किल काम था, बहुत ही कोई 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 होता जिसको ये सआदत मिलती, मगर दीवान नहीं वार, जौक था शौक था, दुआ बड़ा करते। हज के अय्याम जब आते तो आपका जौक शौक और बढ़ जाता, और कभी कभी ऐसे बैठे बैठे कह उठते, पता नहीं उशाक क्या कर रहे होंगे। हाजियों को उशाक कहते थे, ये अल्लाह के आशिक हैं, अल्लाह की मोहब्बत में पहुंच गए। तो मशाइख का ये कहना है, जो अल्लाह से इश्क करता है अल्लाह उसी को बुलाते हैं। तो हजरत फरमाते, पता नहीं उशाक क्या कर रहे होंगे, पता नहीं उशाक क्या कर रहे। कभी कभी खाने पे बैठे बैठे शुरू हो जाते, पता नहीं उशाक क्या कर रहे हो। कभी कभी लेटते हुए सोचते, पता नहीं उशाक क्या कर रहे होंगे। अल्लाह ताला को इनकी तड़प और इनकी तलब कबूल हो गई। हजरत को मौका मिला इस मुबारक घर की जियारत का, और आप क्योंकि हदीस के उस्ताद थे, सिर्फ ये नहीं कि इस मुबारक घर की जियारत का मौका मिला, बल्कि मस्जिद नबी में हदीस पढ़ाने का मौका मिला। 18 साल मुतवातिर आप हदीस का दर्स मस्जिद नबी में देते, 18 साल मुतवातिर हज करने की तौफीक नसीब हुई। तो इस सफर का ताल्लुक माल के साथ नहीं, इस सफर का ताल्लुक जो है वो आमाल के साथ है। आज हमारे आमाल कम हो गए, इसलिए सफर मुश्किल हो गया है। आमाल पहले की तरह नहीं, इसलिए सफर भी दुश्वार हो गया। मशाइख ने फरमाया, पहले रास्ते कच्चे थे, हाजी पक्के थे, आज रास्ते तो बड़े पक्के हो गए हैं, हाजी कच्चे हो गए। सफर का ताल्लुक आमाल के साथ। हमारे सिलसिला के बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वालों को अल्लाह के घर की जियारत का वैसे ही बहुत शौक, और हजरत को बहुत ही ज्यादा शौक। बड़ी दुआएं मांगी, मगर गुर्बत इतनी थी कि सोच भी नहीं सकते थे कि जा पाएंगे। तो बड़ी दुआएं मांगते, आंसू बहाते, या अल्लाह अपने घर की जियारत नसीब फरमा, अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। एक दिन बहुत दुआएं मांगी, बहुत अल्लाह से मांगा, रात को आराम किया तो ख्वाब में नबी अलैहि सलातो वसलाम की जियारत नसीब हुई। और नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, अब्दुल मालिक तुम हमारे पास आते ही नहीं। ख्वाब में ही जवाब दिया है अल्लाह के नबी, आना तो चाहता हूं, असबाब नहीं है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने ख्वाब में फरमाया कि हम कह देंगे, और ख्वाब मुकम्मल हो गया। आंख खुली, एक दो दिन में ही हजरत के ही शागिर्दों में से किसी एक ने आके अर्ज की कि हजरत, इतने दिनों से दुआएं कर रहा था, नियत कर रहा था कि आप मेरी तरफ से हज करने का कबूल फरमाएं, तो ये मेरी तरफ से हज के लिए कुछ रकम है, इससे आपका हज हो जाएगा, आप मना ना फरमाएं, इसको कबूल कर लें। हजरत ने उस साल हज फरमाया। इस ख्वाब को देखने के बाद हजरत 27 साल जिंदा रहे, 27 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। उन 27 साल में से 26 मरतबा हज की सआदत नसीब हुई। अल्लाह अकबर। तो ये हज के सफर का ताल्लुक माल के साथ नहीं है, इस सफर का ताल्लुक आमाल के साथ है। जब अल्लाह राजी होते हैं, इंसान अल्लाह को राजी करता है, मोहब्बत जौक दिखाता है, रास्ते खुल जाते हैं। और जब शौक और मोहब्बत कम हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। उस मालिक के घर की जियारत कोई छोटी जियारत है। दुनिया का कोई बादशाह हमें अपने महल में बुला ले तो हमारे लिए इतनी बड़ी सआदत, अपने हर रिश्तेदार को हम बताएंगे कि जी बादशाह ने अपने महल में बुलाने बुलाया है, दावत दी है। तो सोचिए इस कायनात का बनाने वाला, इतने अरबों खरबों सितारों और सैयारों के बनाने वाला, उसके घर की ज़ियारत कितनी बड़ी सआदत। तो ये पक्की बात है कि इस मुबारक सफर की जो ताल्लुक है वो माल के साथ नहीं है, इस मुबारक सफर का ताल्लुक आमाल के साथ है। आज आमाल फीके पड़ गए, दिल गफलत की तरफ चले गए, इसलिए सआदतें भी छीन ली गई हैं। अल्लाहु अकबर। तो दिल में तलब नहीं होती तो सआदत मिलती नहीं है। अमेरिका में एक डॉक्टर साहब थे, वहीं अमेरिका में काफी साल गुजार दिए, बेटे को भी डॉक्टर बनाया, और बेटा जो था अमेरिकी स्कूल और कॉलेजेस में और माहौल में वहीं रंग में रंग गया, डॉक्टर तो बन गया मगर दीन से बहुत दूर हो गया। बाप कुड़ता भी था कि जी बिल्कुल दीन की ना खबर ना समझ, और डॉक्टर तो बन गया, दुनिया तो मिल गई, दीन हाथ से निकल गया। तो डॉक्टर साहब को ख्याल आया कि इन बच्चों को लेके हरम बैतुल्ला शरीफ जाता हूं ताकि उनके दिल में कोई दीन का की वैल्यू पैदा हो, कोई समझ उनको आए, कोई इबादत में वक्त गुजरे। बेटे से कहा कि चलते हैं उमरे के लिए, बेटे ने मना किया। अब बीवी को कहा कि तुम समझाओ, उसने कहा कि अब मेरे पास ये मसरूफियत है, ये है वो है, मेरे लिए एहराम बांधना मुश्किल है, फलां है। बहुत ही उसने रिजिस्ट किया, वालिद और वालदा कहते रहे, वालिद वालदा की बहुत ज्यादा कहने पर उसने हामी भर दी। अब ये अमेरिका से सफर करके जद्दा आए, मक्का मुकरमा पहुंचे। अब अपने दिल में कोई तलब नहीं थी, बस माँ बाप की जबरदस्ती पे पहुंच गया। वालदैन दोनों बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे पे इनके साथ गए, दरवाजे पे पहुंचा तो कहने लगा कि मेरा दिल अंदर जाने को नहीं कर रहा। वालिद ने कहा बेटा तू एहराम में, हम दोनों तेरे वालदैन, हम भी एहराम में, अब तो यहां पहुंच गए, बस उमरा करना है। कहता नहीं, दिल को कुछ हो रहा है अंदर जाते हुए, मजा नहीं आ रहा। बड़ा समझाया वालदेन ने, उसने कहा नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता। तो वालदेन ने कहा अच्छा ठीक है फिर हम अंदर जाते हैं, हम तो उमरा करें। वालदेन ने उमरा कर लिया, बैतुल हरम शरीफ के दरवाजे से अल्लाह ने वापस भिजवा दिया और उस मुबारक घर की ज़ियारत ना हो सकी। इस घर के सफर का ताल्लुक माल के साथ नहीं, इस मुबारक घर के सफर का ताल्लुक आमाल के साथ, शौक के साथ है। जो अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक रखता है, जो हज पे जाने का शौक रखता है, अल्लाह ताला उसके शौक को पूरा जरूर करते हैं। चुनांचे हजरत मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत एक्तिस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफाओं में से भी थे, मारिफुल कुरान, कुरान पाक की बड़ी मशहूर तफसीर हजरत ने तसनीफ फरमाई। तो बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने ये वाकया अपनी किताब में नकल फरमाया है, इसलिए ये वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं कि लाहौर में एक गवाला था। गवाला कहते हैं दूध का काम करने वाला, गाय से दूध निकालता था, गाय भैंस से, और दूध बेचता था। अब ये गवाला जो था नेक आदमी था, मगर इसका कारोबार जो था बस ये दूध का कारोबार था। जिंदगी में बस दूध निकालना, गाय भैंस से दूध निकालना सीखा था। मस्जिद में गया तो उन दिनों हज के दिन करीब थे, मस्जिद के इमाम साहब ने हज पे बयान किया और हज की फजीलत बयान की कि कैसे हज करने वाला अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बन जाता है और हज करने वाला अल्लाह की नजर में कितना बड़ा बंदा होता है और कैसे उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागती है और उस मुबारक घर में कैसी बरकतें हैं। इतना जोश और वलवला उस गवाले में आया कि उसकी जुबान पे बस बेसाख्ता जारी हो गया कि हज पे जाना है। अब हर थोड़ी देर बाद ये कहे हज पे जाना है, हज पे जाना है। लोगों से पूछा भाई कैसे हज पे जाते हैं, उन्होंने कहा कि जी हज पे तो ऐसे सिर्फ कह के तो नहीं जा सकते, हज के लिए पासपोर्ट बनता है, टिकट बनती है, और उस जमाने में एयरलाइन नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि जी पहले तो ट्रेन का सफर करके कराची जाना होगा और कराची की बंदरगाह से जो जहाज है हुज्जाज का वो लेके जाता है हज पे। उन्होंने कहा जी कराची कैसे जाते हैं? उन्होंने जी कराची तो ट्रेन से जाते हैं, हज पे जाना है, हज पे जाना है। नारे लगाते लगाते लाहौर के ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा ये गवाला और ट्रेन मास्टर से कहा कि जी हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कराची पहुंच जाओ तो वहां से फिर तुम हज का सफर शुरू कर सकते हो। ट्रेन मास्टर ने कहा कि पैसे हैं? उन्होंने कहा जी पैसे वैसे कोई नहीं है मगर हज पे जाना है। ट्रेन मास्टर ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, पैसे नहीं है यहां से कराची जाने के तो तू आगे जद्दा और मक्का कैसे जाएगा, ये सफर के पैसे, पासपोर्ट ये। उसने कहा भाई हज पे जाना है। ट्रेन मास्टर ने भी इसका जज्बा देखा, उसने कहा भाई ठीक है मैं तुझे कराची तक पहुंचा देता हूं, तेरे पास पैसे नहीं है ठीक है मेरी सीट पे बैठ जाना। ट्रेन मास्टर ने भी इसके ऊपर रहम खाया, उसको किसी न किसी तरह इधर उधर बिठा बुठू के और उसको कराची पहुंचा दिया। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलता है बस वही रट लगी हुई, हज पे जाना है, हज पे जाना है। कैसा दीवाना। किसी से पूछा भाई हज पे कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि जी बस यहां से कई मील दूर जो है वो बंदरगाह है, वहां पे जहाज लगा हुआ है हाजियों का, चंद दिन में जहाज निकलना है। उसने कहा कौन सा रास्ता? उसने कहा इस रास्ते से जाओ। पैदल कई घंटे चल चल के वहां जहाज पे पहुंच गया। अब जहाज के बाहर जो कुली खड़े होते हैं हाजियों का सामान रखने वाले, उनसे कहा कि भाई मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपके पास टिकट है? उसने कहा नहीं। आपके पास पासपोर्ट है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, इस तरह कोई हज पे जाता? पैसे हैं? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर कैसे हज पे जाना है? उसने कहा पता नहीं बस हज पे जाना है। अल्लाह अकबर। कुली भी हंसते कि ये कैसा बंदा है। उसने कुलियों से कहा कि भाई जिस दिन जहाज जाने के लिए तैयार होगा ना, तुम लोग सामान रखोगे, मुझे भी मौका देना, मैं भी रखूंगा तुम्हारे साथ। उनसे दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। कुलियों की वर्दी पहन के जिस दिन जहाज लगा, खूब सामान सबके रखे और फिर आखिर में जब आखिरी फेरा लगाया तो कुली की वर्दी उतार के अपने कपड़े पहन लिए और कुली की जो वर्दी थी वो नीचे भेज दी। टिकट पासपोर्ट पैसे वगैरह जहाज के ऊपर चढ़ गया और जहाज रवाना। अब जहाज तो रवाना हो गया, कराची में तो पकड़ा नहीं गया टिकट और पासपोर्ट के बगैर, मगर वहां जद्दा की बंदरगाह पे तो पकड़ा जाए। बस हर वक्त एक ही रट, हज पे जाना है, हज पे जाना है, हज पे जाना है। दीवाना जो हो गया था, और इस सफर का ताल्लुक दीवानगी के साथ है। एक आदमी से दोस्ती कर ली थी, सारे कब्सारों के पास रहने के लिए जगह, लेटने के लिए जगह, ये कभी इधर बैठता कभी उधर बैठता, कभी यहां घूमता कभी वहां घूमता। वो जिन साहब से दोस्ती की थी उससे बस एक ही मुतालबा रखा था कि बस जब जद्दा की बंदरगाह नजर आने लगे तो मुझे बता देना। उसने कहा हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, जब बंदरगाह नजर आएगी तो बता दें। चंद हफ्तों के सफर के बाद बंदरगाह सामने नजर आई। अब दोनों कश्ती के कोने पे खड़े हैं, उसने कहा ये जो सामने रोशनियां नजर आ रही है ना, ये जद्दा है, जद्दा की बंदरगाह है। उसने कहा यहां से हज पे जाते हैं? उसने कहा हाँ यहां से हज पे जाते हैं। तो हमारी अब ये जहाज लगेगा बंदरगाह पे, तो फिर हम हज पे जाएंगे। उसके दोस्त को नहीं पता था कि ये बिल्कुल ऐसे पासपोर्ट टिकट के बगैर। तो उसने वापस पूछा कि क्या वाकई वो जद्दा है, जद्दा की बंदरगाह? उसने कहा हाँ। बस ये सुनते ही उसने जोर से नारा लगाया, बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर, और समंदर में छलांग लगा दी। अब वो जो दोस्त था वो बड़ा हैरान हुआ कि इसने छलांग लगा दी, काश कि मैं इसको ना ही बताता ये इसने क्या किया। बड़ा परेशान हुआ, ओ हो। उसने कहा ये तो फौत हो गया। दूसरे लोगों को भी बताया कि हमारा एक साथी फौत हो। चंद दिनों बाद हज के दिन शुरू हो गए, जहाज भी लग गया था जद्दा पे, और जहाज वाले जहाज से उतर के, और ये जो गवाला जो था इसका दोस्त भी उतर गया, और ये हज को पहुंच गए। इन लोगों ने हज किया, हज मुकम्मल किया। तो उसके बाद एक दिन बैतुल्ला शरीफ की वैसे जियारत के लिए ये आदमी जो इस गवाले का दोस्त बना था ये आया, तो इसने देखा कि ये जो गवाला है ये खड़ा हुआ है यहां बैतुल्ला शरीफ के पास, मगर देखने में वो कपड़े पाकिस्तान वाले नहीं है, अरबों वाले अरबी शेख लग रहा है। तो और करीब जाके देखा, क्योंकि उसके जहन में ये था कि ये तो फौत हो गया होगा गवाला, इसने इतने ऊंचे से छलांग लगा दी समंदर में। जब करीब गया और जाके कहा कि आप वही हैं जिन्होंने छलांग लगाई थी समंदर में, जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, उन्होंने आगे से कहा कि हाँ मैं वही हूं। उसने कहा मेरी दोस्त तू बच गया, गले मिला, शुक्र है अल्लाह ने तेरी जान बचा ली। उसने कहा बच कैसे गए, तुम तो समंदर में तुमने छलांग लगाई। उसने कहा मेरे साथ मेरे घर चलो तो तुम्हें बताता हूं कैसे बच गए। बड़ा हैरान हुआ कि तेरे पास घर कहां से, तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने कहा चलो तो सही, बाहर निकले हरम शरीफ से। उसने कहा ठहर जाओ, मेरी गाड़ी और ड्राइवर आती है तो गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे। ये आदमी तो और हैरान कि तू गाड़ी, तेरे पास एक रुपया नहीं, गाड़ी ड्राइवर घर कहां। थोड़ी देर में गाड़ी आती है, ड्राइवर आता है गाड़ी चलाते हुए, और इसके करीब गाड़ी रुकती है, दरवाजा खोल के ये अंदर बैठ गए दोनों, और थोड़ी देर में एक घर के करीब वो गाड़ी उनको रोकती है और ये उतरते हैं। ये आदमी हैरान कि तू ग्वाला लाहौर का, ना तेरे पास पैसे थे ना तेरे पास पासपोर्ट था, ये घर ये गाड़ी ये ड्राइवर ये क्या है। उसने कहा कि मैं वहां से नीचे छलांग लगाई, फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे तो पता नहीं पानी में क्या हुआ, लहरों ने मुझे धकेल कर साहिल पर डाल दिया, मेरे मुंह में मेरे पेट में मेरे जिस्म में पानी पानी था, मगर दो बंदे चीख रहे थे तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा दो बंदे चीख रहे हैं और एक गाय में से दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं और गाय उनके काबू ही नहीं आ रही है। मैं उनके करीब गया और मेरी जिंदगी में मैंने एक ही काम सीखा था, गाय में से दूध निकालना। मैंने उसकी जबान तो नहीं जानता था, इशारे से कहा कि मुझे मौका दो मैं दूध निकाल के देता हूं। मैंने अपने अंदाज में गाय को हाथ लगाया और उनसे तो एक गिलास भी दूध नहीं निकल रहा था, मैंने एक बाल्टी दूध निकाल के उनको दे दी। बड़े हैरान, उन्होंने कहा तुम इधर ही ठहरो। थोड़ी देर बाद अपने जो उनके जो बॉस थे उनको बुलाया और उसको बताया कि इसने एक बाल्टी दूध की निकाल के दी है। उस बॉस ने कहा कि भाई तू यहाँ ठहर जा, मेरा बेटा जो है वो बीमार है, डॉक्टरों ने कहा है कि जी गाय का दूध ही निकाल के देना है, और कोई भी यहाँ इतना माहिर नहीं है जो गाय में से दूध निकाल के दे सकता है, तो तुझे यहाँ ठहरना होगा। उसने कहा भाई मैंने तो हज पे जाना है, फिर हज पे जाना है, हज पे जाना। उसने कहा भाई हज भी करा देंगे, तू फिक्र ना कर, मगर तू यहां गाय में से दूध निकाल के दे, मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है। उसने कहा कि ठीक है, मैं दूध निकाल के दूंगा। उस बॉस ने, उस साहब ने, अरबी ने कहा कि हम तुझे रहने के लिए भी जगह देंगे, घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, और तू सिर्फ ये काम कर ले, मेरे सुसर की गायों का एक बाड़ा है, 200-400 के करीब गाय हैं, उनमें से भी दूध निकालना होगा, और कोई यहां दूध निकालने वाला है नहीं, किसी को ये काम आता नहीं। मैंने वहां जाके भी खूब दूध निकाला, मेरी नौकरी यहां पक्की हो गई, अब ये घर भी मुझे मिला है, गाड़ी और ड्राइवर भी उन्होंने दिया है, और अब उन्होंने मुझे मौका दिया है कि जी मैं अपनी फैमिली को भी यहां बुलाऊं, ताकि हर साल मैं इधर हज कर सकूं। अल्लाह अकबर। तो इस सफर का ताल्लुक माल के साथ नहीं है, इस सफर का ताल्लुक आमाल के साथ है, जज्बे के साथ है। आ जज्बे ठंडे हो गए, इस घर का सफर जो है ये मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। अल्लाह ताला हमें अपने घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, और जो गलती कोताही हमसे हुई है अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला अपने घर के दरवाज़ों को हम सब के लिए वापस कुशादा फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए सब्ज़ रात मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खीरद मफलूज हुए, दिल जौके तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, एहसास के पर्दे लहराए, ईमा की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमा की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमील अल्लाह अल्लाह। हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमील अल्लाह अल्लाह। खाती हूँ मैं कितना भूल गया, पापी हूँ मैं कितना भूल गया, खाती हूँ मैं कितना भूल गया, पापी हूँ मैं कितना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, जो सोचा था वो भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, जो सोचा था वो भूल गया। इजहारे अकीदत की धुन में, इजहारे तमन्ना भूल गया, इजहारे अकीदत की धुन में, इजहारे तमन्ना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह बुरे दिन से महफूज फरमा, अल्लाह बुरी रात से महफूज फरमा, मेरे मालिक बुरे कामों से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमें बुरे अंजाम से महफूज फरमा, अल्लाह हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा, अल्लाह सीधा रास्ता मिलने के बाद भटकने से महफूज फरमा। अपना कुर्ब हासिल हो जाने के बाद अपनी दूरी से महफूज फरमा। मेरे मालिक, नेमतें मिल जाने के बाद नेमतों के छिन जाने से महफूज फरमा। अल्लाह, इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। मेरे मालिक, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। अल्लाह, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। मेरे मालिक, अपनी रहमत का साया अता फरमा। अल्लाह, हज के अय्याम शुरू होने को आए हैं। मेरे मालिक, हमें बार बार अपने घर की ज्यारत नसीब फरमा। ला अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। ला, वो तेरे कैसे बंदे होते हैं, एहराम बांधते हैं। ला, तेरी मोहब्बत में ला नारे लगाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ला, दीवाना वार तेरे घर पे हाजिर होते हैं। ला, कोई हजरे अस्वद को बोसा देता है। ला, कोई मुल्तजिम से लिपट के दुआएं करता है। ला, कोई दीवाना वार तेरे घर के चक्कर लगाता है। मेरे मालिक, कोई अपने दिल की फरियाद तेरे सामने पेश करता है। ला, कोई अपनी आंखों को तेरे मुबारक घर को देखकर सुकून पहुंचाता है। मेरे मालिक, हमें भी ये दौलत नसीब फरमा। मेरे मालिक, हमें भी ये दौलत नसीब फरमा। इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं। इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूमे आशिका होगा। अल्लाह, हमें बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमा। ला, अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। मेरे मालिक, हमारे बड़ों ने फरमाया, रास्ते अब पक्के हो गए हैं मगर हाजी कच्चे हो गए हैं। अल्लाह, हाजी कच्चे हो गए हैं, आपने हज के लिए रास्ते बंद कर दिए। अल्लाह, अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह, इन रास्तों को फिर से खोल दीजिए। लाइन रास्तों को फिर से खोल दीजिए। अल्लाह, आपके प्यारे महबूब की ये गुनहगार उम्मत कहाँ जाए। अल्लाह, इस घर की जियारत भी ना की तो क्या किया। अल्लाह, अपने घर से महरूम न फरमा। अल्लाह, अपने प्यारे महबूब के दर से महरूम न फरमा। तेरे मालिक, रहमत का मामला फरमा। अल्लाह, हम गुनाहगारों की तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह, अपनी रहमत का मामला फरमा। अल्लाह, उठे हुए हाथों की लाज फरमा। अल्लाह, उठे हुए हाथों की लाज फरमा। मेरे मालिक, करम के फैसले फरमा। अल्लाह, हमें बार बार अपने मुबारक घर की ज्यारत नसीब फरमा। अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा। अल्लाह, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अल्लाह वो भी अता फरमा। अल्लाह, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनको भी इन दुआओं में शामिल फरमा। अल्लाह, जहां जहां मुसलमान परेशानी के आलम में है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, जो घर बार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह, जो काम कारोबार की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह, जो औलाद की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह, औलाद के गमों से महफूज फरमा। अल्लाह, औलाद के दुखों से महफूज फरमा। मेरे मालिक, जो अपनी सेहत की वजह से परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। मेरे मालिक, बच्चा जब परेशान होता है माँ बाप की तरफ दौड़ता है। अल्लाह, बंदा जब परेशान होता है परवरदिगार की तरफ लौटता है। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियों को भर देने वाले, ए मुश्किल में पड़े हुओं को मुश्किल से निकाल देने वाले, मेरे मालिक रहमत का मामला फरमा, अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज फरमा। ए अल्लाह कौन है जो आपके सिवा हमारी आवाज सुनने वाला, मेरे मालिक हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह हमें अपने दर से महरूम न फरमा, अल्लाह अपने दर से महरूम न फरमा। अल्लाह आपके तो हमारे जैसे अरबों खरबों हैं, मेरे मालिक हमारा आपके सिवा कोई नहीं, अल्लाह अपने दर से महरूम न फरमा। अल्लाह अपनी रहमतों का साया अता फरमा, अल्लाह अटके वे कामों का होना आसान फरमा, अल्लाह उलझे वे कामों को अपनी रहमत से सुलझा, मेरे मालिक अपनी रहमत से सुलझा। अल्लाह ये जो वबा पूरी दुनिया में आई है, अल्लाह जो जाहिरी तौर पे सबब बन गया आपके घर की दूरी से, अल्लाह आपके घर की दूरी का जाहिरी सबब तो ये वबा है, अल्लाह इस वबा से हमें निजात नसीब फरमा। और अल्लाह जो हकीकी सबब है वो हमारे गुनाह है, अल्लाह इन गुनाहों से भी निजात नसीब फरमा, अल्लाह अपनी रजा नसीब फरमा, अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह जैसा आप हमसे राजी होते हैं मेरे मालिक हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अजीज अकारिब रिश्तेदार मशायख असातिज़ा वालदैन जो भी इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, जो हयात हैं, अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा, अल्लाह जिनकी मगफिरत फरमा दी अपने कुर्ब के आला दरजात नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत्तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।